आयु हॉस्पिटल में थी। आरव ने शाम को उसे जल्दी आने का मैसेज किया था, लेकिन आयु ने उसके मैसेज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आयु ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और अपनी ड्यूटी पर लग गई। हॉस्पिटल में आयु का पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक बीता, जहां उसने दो सर्जरीज में असिस्ट करने के अलावा जनरल वार्ड में थोड़ी देर ड्यूटी की। शाम के 6 बजे के करीब जब उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो आयु वापस अपने केबिन में आ गई। आयु चेयर पर बैठते हुए बोली, इतने दिनों बाद काम करने के बाद कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी आराम करने के बजाय और काम करने का मन कर रहा है। शायद ये इस वजह से है कि मुझे घर नहीं जाना और आरव की शक्ल तो बिल्कुल नहीं देखनी। ऐसा करती हूँ, कुछ देर रेस्ट करने के बाद अयान को बोल दूंगी कि मेरी ड्यूटी टाइम बढ़ा दे। घर जाऊंगी तब तक वो सो जाएगा। मुझे इस तरह से अपना शेड्यूल सेट करना होगा ताकि आरव का कम से कम सामना करना पड़े। बोलते हुए आयु चेयर पर लीन हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आयु को रेस्ट करते हुए कुछ ही टाइम बीता होगा कि अयान उसके केबिन में आया। वो काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था। उसने जाकर आयु का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कहा, क्या बात है छिपकली, लगता है तेरे मिस्टर खुराना को एक मिनट भी तेरे बगैर नहीं रहना। आयु को कुछ समझ नहीं आया अयान किस बारे में बात कर रहा है। उसने सवालिया नज़रों से अयान की तरफ देखा और पूछा, जो कहना है सीधे सीधे कहो, मैं ऑलरेडी काफ़ी थक गई हूँ और तुम्हारे ये रिडल सॉल्व करने के मूड में नहीं हूँ। लगता है तूने अपना मोबाइल अभी तक ऑन नहीं किया। तुझे कितनी बार कहा है ऑफ मत किया कर, वाइब्रेट कर दिया कर। आरव तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, तुमने उनका कॉल पिक नहीं किया तो वो तुझे लेने के लिए यहाँ तक आ गए। आरव बाहर तेरा वेट कर रहे हैं, अयान ने उसे पूरी बात बता दी। वही सब सुनने के बाद आयु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नकली मुस्कुराहट देते हुए कहा, क्या आरव यहाँ तक आ गया है, देखो ना कितना रोमांटिक है, मैंने अपना शेड्यूल बढ़ाया है, तुम ऐसा करो जाकर उसे बोल दो कि मैं खुद से घर आ जाऊँगी। आयु के ऐसा कहने पर अयान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसके कंधे पर हल्का मारते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गई है, शादी में अभी एक दिन बीता है और तुझे हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी है, तू तो हनीमून पीरियड के लिए छुट्टी लेने वाली नहीं, लगता है ज़बरदस्ती मुझे ही तुम्हें लीव पर भेजना होगा। प्लीज़ ऐसा मत करना, आयु छट से बोली। वो ये नहीं चाहती थी कि अयान की वजह से उसे घर पर रहना पड़े, खासकर आरव के पास। आयु ने प्लीडिंग वे में कहा, मैं अपना काम फिनिश करके चली जाऊँगी, बस मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप चलो मेरे साथ, अयान ने जवाब दिया। उसने आयु का हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जाने लगा। बाहर जाते वक्त उसने आयु की डेस्क पर रखा उसका मोबाइल भी उठा लिया था। अयान आयु को बाहर लेकर आया। बाहर आरव अपनी गाड़ी के पास खड़ा आयु का वेट कर रहा था। जैसे ही उसने देखा अयान ने आयु का हाथ पकड़ रखा है, उसने सर्द निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। गाड़ी के पास आते ही अयान ने आयु का हाथ छोड़ दिया और उसे उसका मोबाइल देते हुए कहा, हैव फन छिपकली। फिर उसने आरव की तरफ देखकर कहा, कैसे हस्बैंड हो आप, आपकी वाइफ शादी के अगले दिन ही ड्यूटी पर आ रही हैं और आपने उन्हें रोका तक नहीं। अपने काम से मतलब रखो, आरव ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने आयु की तरफ अंदर बैठने का इशारा किया। आयु ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। वहीं आयु के जाते ही अयान ने कहा, कितने रूड हो आप, कम से कम मेरी भाभी के सामने तो मेरी रिस्पेक्ट रख लिया करो। अयान के मुंह से आयु के लिए भाभी सुनकर आरव ने कुछ पल रुक कर कहा, क्या आयु ये बात जानती है कि हम दोनों, बोलते हुए आरव रुक गया। अयान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, नहीं वो इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं, मैंने अभी तक उसे नहीं बताया, आपको जब सही लगे आप बता देना, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी, चाहे रिश्ता कुछ भी हो। ऐसे कैसे रिश्ता कुछ भी हो, वो तुम्हारी भाभी लगती है और आगे से उसका हाथ मत पकड़ना, गॉट इट, आरव ने भौंय उठाकर कहा और फिर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। वहीं अयान उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, जल कुकड़े कहीं के, इन्हें सबसे जलन होती है। अयान वहां से वापस अंदर चला गया। आरव और आयु गाड़ी में थे। आरव गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि आयु बाहर की तरफ देख रही थी। आरव ने आयु की तरफ बिना देखे कहा, मैंने तुम्हें कॉल किया था मिसेस खुराना, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, तुमने मेरा मैसेज भी रीड करके कोई जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें 6 बजे घर आने को कहा था और अब 7 बज रहे हैं। आरव की बात सुनकर आयु ने एक नज़र आरव की तरफ देखा जिसका ध्यान ड्राइविंग में था। आयु ने सामने देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और तुम्हें ये किसने कहा कि तुम्हारे पास हाँ या ना कहने का ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं मिसेस हुआना, तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम्हें अपनी बात तक रखने का हक नहीं है, फिर हाँ या ना कहना तो दूर की बात है, आरव ने कोल्ड वॉइस में कहा। आयु ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आरव भी चुप हो गया। कुछ देर बाद वो दोनों खुराना मेंशन में थे। गौरवी जी उस वक्त अपने कामों में बिजी थी। घर पहुंचते ही आयु सीधा अपने कमरे में जाने के लिए घुसी, आरव भी उसके पीछे आ रहा था। कमरे के अंदर आते ही आरव ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आरव के ऐसा करने पर आयु उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। आयु आरव से कुछ पूछ पाती उससे पहले आरव ने सख्त आवाज में कहा, नहाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारे अंदर से मेडिसिन की स्मेल आ रही है, मैं तुम्हें इस तरह एक मिनट भी नहीं टॉलरेट कर सकता। आरव की बात सुनकर आयु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने सिर हिलाकर हल्के गुस्से में कहा,
ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम मुझे एक मिनट भी टॉलरेट नहीं कर सकते तो मुझसे दूर रहो। अब तो मैं बिल्कुल नहीं नहाने वाली। आरव ने आयु की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरव तेज कदमों से आयु के पास बढ़ा और उसे कमर से पकड़कर अपने कंधे पर उठा लिया। आरव की इस हरकत पर आयु गुस्सा हो गई। उसने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, आरव क्या कर रहे हो तुम, प्लीज छोड़ो मुझे। आरव के ऐसा करने पर आयु को डर भी लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी कि न जाने आरव उसके साथ क्या करने वाला है। बाथरूम के अंदर आते ही आरव ने आयु को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद उससे दूर खड़ा हो गया। उसने फिर शावर ऑन किया और कहा, आगे से कभी मुझे मना मत करना, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं पाकर रहता हूँ, फिर चाहे अपने तरीके से क्यों ना करना पड़े। अपने तरीके से तुम्हारा मतलब जोर जबरदस्ती से ना, आयु ने हल्का चिल्लाते हुए कहा। ऊपर अचानक पानी गिरने की वजह से उसे और चिड़ महसूस हो रही थी और वो गीली भी हो गई थी। आरव ने कंधे उचकाए और जवाब में कहा, जैसा तुम समझो। फिर आरव ने टेढ़ा करके आयु की तरफ देखा। पानी गिरने की वजह से उसके कपड़े उसकी बॉडी के चिपक गए थे और बाल भी गीले हो गए थे। आरव को अपनी तरफ अजीब नजरों से देखता पाकर आयु तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गई और चिल्लाकर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? बाहर जाओ, आ जाऊंगी बनाकर, खुश हो जाओ, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो आयु ने सोचा, आरव वहां से चला गया है। उसने मुड़कर देखा तो आरव अभी भी हाथ बांधकर उसी को देख रहा था। सेंशुअस लग रही हो, आरव ने बिना किसी भाव के कहा और बाहर चला गया। और तुम बिल्कुल बेशर्म, आयु ने बड़बड़ाकर कहा और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाने के बाद आयु ने बाथ लिया और बाथरोब पहनकर बाहर आई।
बाहर आरव उसका वेट कर रहा था। जैसे ही आयु बाहर आई, उसने आयु को फिर से अच्छे से चेकआउट किया और कहा, मैंने बेड पर तुम्हारे लिए ड्रेस रखी है, आधे घंटे का टाइम है, अच्छे से रेडी हो जाओ, हमें कहीं चलना है। मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही मैं तैयार होने वाली हूँ, आयु ने सख्ती से जवाब दिया। आयु के मना करने पर आरव ने सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखा और जवाब में कहा, तुम्हें तो नहाना भी नहीं था, फिर भी नहाकर बाहर आई हो ना, तुम क्या चाहती हो मैं अपने हाथों से तुम्हें ये कपड़े पहनाऊं? ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं हो जाऊंगी तैयार, आयु ने लाचारी के साथ कहा। वो जानती थी कि अगर आरव ने उसके कपड़े खुद चेंज करने को कहा है तो वो जरूर करेगा। आयु के हाँ कहते ही आरव बाहर चला गया। उसकी जाते ही आयु ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आरव की सिलेक्ट की हुई ड्रेस देखी। वो एक रेड कलर की साड़ी थी जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का रेड ऑरेंज फ्लोरल ऑफ वाइट ब्लाउज था। ट्रेडिशनल पहन के जाना है, आयु ने हैरानी से ड्रेस की तरफ देखते हुए कहा। उसे लगा आरव उसे किसी डेट या डिनर के लिए बाहर ले जा रहा है और उसके लिए कोई वेस्टर्न वियर या शॉर्ट ड्रेस सिलेक्ट करेगा। साड़ी देखकर उसने हैरानी के साथ कहा, ओ गॉड, मैं तो भूल ही गई थी, दादी ने सुबह कहा था कि पगभेरे की रस्म के लिए जाना है और मैं उससे बार बार जिद कर रही थी कि मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। मॉम डैड तो पहले से ही नाराज हैं, लेकिन कम से कम सिमरन भाभी और रुद्र भैया से तो मिल ही सकती हूँ। अपने घर जाने के ख्याल से ही आयु के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। पहले जहाँ वो मजबूरी में तैयार हो रही थी, अब वो दिल से रेडी होने में लग गई। कुछ ही देर में आयु साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। उसने कानों में हैवी झुमके पहने और उसके अलावा हाथों में एक एक बैंगल्स डाल रखे थे। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर के अलावा उसने और कोई ज्वेलरी कैरी नहीं की थी। उतने में ही वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आयु ने अपने बालों को स्ट्रेट करके स्लीक्स करके पीछे की तरफ खुला छोड़ रखा था। खुद को एक नज़र आईने में देखने के बाद आयु ने हल्का स्माइल करते हुए कहा, भले ही मुझे यहाँ कितनी भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती भाई। आयु ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए चल दी। वहीं नीचे आरव गौरवी जी से बहस कर रहा था। गौरवी जी ने उसे सख्त आवाज में कहा, सीरियसली आरव, आज तुम्हें पगफेरे के लिए जाना था, सुबह से सिमरन और तारा के काफ़ी कॉल आ चुके हैं और अब तुम मना कर रहे हो? हाँ दादी, क्योंकि मेरे अपने प्लान्स हैं, उन्हें भी समझना चाहिए, हमारी नई नई शादी हुई है, फिलहाल के लिए मुझे उसे अपने साथ लेकर जाना है, आप कॉल करके बोल दीजिएगा हम कल आ जाएंगे, इतनी बेवकूफ तो वो भी नहीं है, समझ जाएंगे, आरव ने मना करते हुए कहा। गौरवी जी उसे आगे कुछ कह पाती उससे पहले आयु वहां आ गई। उसके सामने वो चुप हो गई ताकि उसका मूड खराब ना हो। गौरवी जी ने हल्का स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, अब जब दोनों साथ जा रहे हो तो अच्छा टाइम स्पेंड करना। गौरवी जी को बाय बोलने के बाद आरव और आयु गाड़ी में थे। आयु को लग रहा था कि आरव उसे अपने घर लेकर जा रहा था।